गंभीर इशारा किया है कि किया है। हमको जीवन में चाहिए तेज। आज हम हजार वर्ष के हो जाओ, 100 वर्ष के हो जाओ, ये हो जाए, ये ईश्वर मिल जाए, ये सब कुछ नहीं, पर एक ही आशीर्वाद है, ये दृष्टि भाव प्रतिभा संयुक्त हो जाओ, आभार मंदिर को हो जाओ, लेकिन वो तेज चाहे बोले कोटि को सूर्य के लिए महात्म है, कोटि सूर्य सम प्रभाव, कितनी आभार है, कितनी विभाग है, कितनी प्रभाव है, कितनी प्रतिभा है, और कितने कितने भास्कर व्यक्तित्व प्रतिशत लोग में आते जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ तेज के मतलब उस सत्संग से है, उन रसिकों के सत्संग से है, जिनके मध्य में करके उन दिन उनके हृदय में खदकती हुई जो श्री कृष्ण के प्रेम की विरह ज्वाला है, उस विरह ज्वाला का एक पुलिंग भी यदि हमारे हृदय में सुलग हो गया तो हमारे जीवन में वो तेज आ जाएगा, वो हमारा दीपक गलित हो जाएगा, जिससे के लोग परलोक तो क्या वैकुंठ के बाद भी हमारे दिव्य को उठाएंगे और हम वैकुंठ की ओर अग्रसर होंगे, ये बात नहीं, वैकुंठ ही हमें अपनाने के लिए हमारी ओर अग्रसर होंगे। सूर्य की ऊष्मा से समुद्र का उठा हुआ वास्तु जब सुजापत शिखर से स्पर्शित होकर के विमलित होकर के धाराओं तक प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से इस विरह के ताप से भीतर का भाव जब कल्लोल करता हुआ प्रवाहित होगा और उसमें अनेक प्रकार के दिव्य पुंडरीक भाव पुंडरीक विविचित होंगे, तो जैसे कमल के सूर्य किरण के संस्पर्श से खिले हुए कमल के ऊपर मंडराते हुए धौला के चरण संघात से पिछले पटल पर बिखरे हुए मकरंद के कर्ण पहुंचते हैं, तो मधुकरों मधुकों की श्रेणी आ जाती है, ऐसे ही इस भाव का एक कमल श्रीमद भागवत की कृपा से और श्रीमद भागवत धर्म के आचरण करने वाले अनुशीलन की कृपा से और उसके अनुशीलन करने वाले इन आचार्य भागवतों के चरण कैंकर्य को ग्रहण करने से जब उन्हें होती तो हजारों संत बिना बुलाए ही हमारा मंगल दर्शन करने के लिए हमारे जीवन द्वार पर खड़े हो जाए, धन्य हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है तेज तेज लाओ, वो भट्टियों में नहीं मिलेगी, वो ऊर्जा आपको रासायनिक शालाओं में नहीं मिलेगी, वो यज्ञकुंडों की प्रज्वलित अग्निकुंड में नहीं मिलेगी, वो हजारों प्रकार की जो वैश्विक ऊर्जा जब चारों तरफ जो प्रज्वलित हो रही है वहां नहीं मिलेगी, इस विशेष प्रकार के तेज की कणिका प्राप्त होगी रसिकों के संग से जो श्री कृष्ण विरह में आप्त हो रहे हैं, उनके निश्वासों से उनके स्फुलिंग जब तुम्हारे निश्वासों से तुम्हारे भीतर प्रवेश करेंगे तब तुम तेजवंत हो जाए। बंधकों से गंगा गोमती गंदगी कृष्णा का हवेली राजी निराल झेलम जात सकलत नर्मदा और अनेक अनेक कृष्ण प्रभृति दिव्यादि दिव्य कृष्ण गंध की और तेज गंध की जो रघुनाथ के उत्तुंग शिखर से निपटित हो रही है, सब लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बद्री नारायण और अमरनाथ की यात्रा उसके सामने बहुत सरल है। बद्रीनाथ सप्तम वैकुंठ है। आज भी केवल नेपाल महाराज का एक छोटा सा हेलीकॉप्टर 20,000 रुपए में मिलता है जो वहां से हम ऊपर ले जाता है और जहां का दर्शन करते हैं, जहां कल्लोलनी कृष्णगंध की बह रही है। अभी श्री राधा रमन जी का नाम क्या प्राकृतिक की चर्चा की हमारे पूज्य आचार्य ने महाराज उन गोपाल भट्ट गोस्वामी को परिश्रम की कल्पना आप नहीं कर सकते, मैंने वहां बैठ करके कल्पना की। उस समय में श्री मुक्तिनाथ के नीचे के दामोदर कुंड में उच्छलित चालकदाम शिलाओं के मध्य में से किस परिश्रम से जहां नरमांसियों का नरभक्षण करने वाले लोगों का आज भी झुंड है, वहां जाकर के कैसे उस चालकदाम शिला हटा सकते। परंतु उन समुक्त सरिताओं में से कमंडल भर करके स्वर्ण कलश भर करके माण्य के गलत भर करके आप कितना भी पानी ले आए उसका उपयोग नहीं है। केवल एक जगह का पानी चाहिए जहाँ ऐसे मणि की विद्वान कथा कह रहे हो गंग में, और वहाँ इनकी कथा से आपके नेत्रों में जो आंसू की धारा बहे वो वारी वो पानी ही जब आपके भीतर करुणा का जल होकर उत्पन्न होगा, और वह तेज जब बहेगा तेज आपके भीतर आएगा, और मिट्टी इन महापुरुषों के चरणों की रेणु नत होकर के आपके ललाट पर जब जब प्रकट होगी, जब अभिराजित होगी, आपका स्वरूप विभाजित होगा, उस समय श्रीमद भागवत के श्लोक जैसे जमा हुआ घी आपके सामने पिघल करके बहने लगता है, ऐसे ही श्रीमद भागवत के श्लोक इस देश इस करुणा और इस मृत्यु युक्त संभक्तिशाली पुरुषों के ललाट के भीतर अपने तात्पर्य को अपने अर्थ को बहन कर भागवत वैद्य भागवत जन स्वाद्य भागवत जन प्राण संपत्ति जो श्रीमद भागवत है वो पांडित्य का भी संगीत का भी अनेक प्रकार की कलाओं का भी चिंतन मनन का भी अर्चन आराधन का भी सबका माध्यम हो सकती है, लेकिन केवल महत्वपूर्ण जैसे धाम का सेवन धंगड़ियों के बिना नहीं होता, और अन्य अन्य नशाओं को जैसे उन नशेबाजों के मध्य में बैठे बिना स्वादन नहीं हो सकता, ऐसे श्रीमद भागवत के इन नशेबाजों के चरणों की रण रेणु को बिना दिए हुए भागवत है। और इन शब्दों के साथ मैं भागवतों को प्रणाम कर रहा हूँ।
और उस विदुर के श्रीमुख से शोक प्रेम का श्रवण करने की उत्कंठा है, इसलिए श्री उद्धव के द्वारा कृष्ण लीला अपने आप ही हुई चली आ रही है। प्रधानता उद्धव की है, श्री कृष्ण लीला उनके साथ अपने आप ही चली आएगी। प्रत्येक खंड में श्री कृष्ण लीला का जो अभ्यास है, गोपाल विष्णु पास संदर्भों में जिस बात को बहुत दृढ़ता के साथ स्थापित करने का प्रश्न करते हैं वो यही कृष्ण भागवत में सर्वत्र अभ्यास है कृष्ण लीला। और यदि उस अभ्यास को देखें तो अभ्यास में प्रत्येक स्कंध में श्री कृष्ण लीला का कहीं न कहीं वर्णन किया गया, जहां तक कि सप्तम स्कंध में भी नारायण कवच में कहीं गोविंद नाम के द्वारा श्री कृष्ण का ही अभ्यास किया गया, अन्य सारे स्कंदों में तो कृष्ण लीला है ही, सप्तम स्कंद में भी नारायण कवच के द्वारा श्री कृष्ण लीला का निरूपण किया गया, हृदय लीला का निरूपण किया गया, और वहां भी वर्णन भक्तों के चरित्र के साथ साथ ही श्री कृष्ण का चरित्र अपने आप में चला है। तो जहां हम भागवत कहते हैं वहां पर हमें तो ये लगता है कि भगवान की लीला कथा तो भागवत होगी, श्रीमद भागवत का प्रमुख उत्पाद्य भक्तों का चरित्र भी है, और भक्तों के चरित्र के माध्यम से उसकी श्रवण की अभिलाषा मात्र श्रवण की श्रद्धा मात्र के चरण के साथ ही साथ भक्ति प्रेम का प्रेम की रुचि अपने आप साधक में उदय हो जाती है। श्री मधुवंश शास्त्री महाराज ने जो श्लोक का पाठ भी किया था यज्ञामय सूर्य महाराण, जहाँ पर जो श्याम सत्य का प्रयोग किया गया वो यहाँ निरूपण करता है कि अभी कथा सुनी नहीं है, श्रवण करने की इच्छा मात्र हुई है, पर इच्छा मात्र से श्रवण करना भी बड़ी भूल की बात है, श्रवण यदि न करे यदि उसकी श्रवण की इच्छा मात्र करे तो इच्छा मात्र से भी वस्तु जो प्राप्त होगी वो वस्तु प्राप्त होगी भक्ति वस्तु भक्ति, और भक्ति है प्रेम, वो प्रेम के अनुभव का परम उत्पादी है। पूर्वक दृढ़तापूर्वक कृपा की स्थापना करती है, अत्यंत स्थापना करती है कि अन्य अन्य शास्त्रों में सर्वत्र ही भक्ति है, यद्या सर्वत्र सर्वदा जी गोस्वामी ने बड़ा विस्तार के साथ में सर्वत्र शब्द में सर्वत्र भक्ति ही पाते है, इस बात को प्रतिपादित कर प्रतिपादित
आप सभी के लिए पल्लवी के लाड़िए लाल वाणी के गुरवे बहुदचंद्राय राधिकाय रूपदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि वृंदावन के और मथुरा के भागवत के बड़े बड़े विद्वान मार्मिक एवं रसिक वैष्णव का आश्रम हमें मिला। विशेष करके उनके वाणी से स्नान करने का हमको सुयोग मिला। ऐसे सुयोग जीवन में बहुत कम होते हैं जो आज हम लोगों को मिला। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा जी के भाव और कांति को लेकर के आए थे, राधा जी का प्रेम आस्वादन करने के लिए आए थे और साधारण रूप में प्रेम दान करने के लिए, श्रील चक्रवर्ती ठाकुर जी उन्हीं के विचारों को कहते हुए बतला रहे हैं कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तत्धाम वृंदावन रम्या काचित् उपासना बधुवधु वर्गेण जातवर्षिता श्रीमद्भागवतं समान अमलं प्रेमापमध्योमा श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं सत्कारोनापर। कृष्ण आराध्य है श्रीमद्भागवत के ब्रजेन्द्र नंदन श्याम सुंदर ही आराध्य है, किंतु मुझे तो ऐसा लगता है कृष्णेन आराधिता वो श्रीमती राधिका जिनके भावों का आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा जी के भाव और शांति को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले श्री नवदीप धाम में पहुंचे हुए। उन्होंने इसी चीज का आस्वादन करने के लिए क्या प्रेमा तुमको महा प्रेम मनुष्यों के लिए प्राणी मात्र के लिए अर्थ है। कौन प्रेम? कृष्ण तो रसिक है, ये बात ठीक है। कृष्ण के हृदय में भी प्रेम है, श्रीमती राधिका के हृदय में भी प्रेम है, किंतु राधिका के हृदय में जो प्रेम है रूढ़ महाभाव इत्यादि कृष्ण और स्वराज होते हुए भी इस चीज का स्वादन कृष्ण लीला में नहीं कर सके। इसीलिए जिस प्रेम को कृष्ण स्वयं आस्वादन करने के लिए राधा या प्रणय महिमा की विजोवा नैलोवा इत्यादि लोगों में जो व्यक्त किया गया है उसको आस्वादन करने के लिए हमारे राधा जी की प्रिय सखी विशाखा के यहाँ से और रामानंद के रूप में उनसे मंत्र की दीक्षा लेकर और तब उस चीज को आस्वादन आकर के गंभीरा ने लिया। बिना राधिका के कृपा के, बिना उनकी चक्षु के कृपा के, बिना यह प्रेम कभी भी सुलभ नहीं हो सकता है। आपने अभी उनके संबंध में बड़ी मार्मिक और रसिक उक्ति हमारे परम पूजनीय जयचंद्र कृष्ण आश्रम सिद्ध महाराज जी के मुख से आपने श्रवण किया, इसलिए मैं समझता हूँ कि श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य कृष्ण नहीं और कोई नहीं बल्कि वह प्रेम है और वह प्रेम राधा का प्रेम जो कृष्ण के प्रति है, जिसके लिए कृष्ण के मन में लोभ हुआ, यही प्रेम श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य भी है। सर्वत्र इसी के लिए कहा गया इन गोपियों में वह प्रेम है। विशेष करके वंदे नंद स्त्रियां पाद रेणु व विष्णु का यहाँ पर एक वचन रेणु, यहाँ पर रेणु किस रेणु के लिए कहा गया? पाद रेणु गोपियों के लिए कहते हुए भी एक रेणु की जो एक वचन जो हमारे जो कहा गया है यहाँ, मेरे समझ से हमने अपने गुरु वर्गों से यही सुना कि राधा जी के चरण की एक रेणु की वंदना करते हैं उद्धव जी, उसी के लिए सभी रसिक वैष्णव लोग उसी की आराधना करते हैं राधा जी के चरण एक रेणु के लिए। जब ब्रह्मणा मुख्य रा लक्ष्य तो सहसा पुरुष सत्यपति क्यों मनस्क सकते संग्राधिका चरण रेणुम अनुस्मरण। इसलिए मैं अधिक नहीं मैं जाने जाता, मैं यही कहकर के अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ कि राधा जी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है और उसी को श्री चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करके उसका एक कण एक अंश जगत को देने के लिए जगत में पधारे थे, वही चैतन्य महाप्रभु का विचार है। मैं श्रीमद् भागवत के वक्ता श्रोता और उनके प्रतिपाद्य विषय श्री कृष्णचंद्र गोपियां जिनकी आराधना सर्वोत्तम है उस उन गोपियों की और श्रीमद् भागवत की और परम प्रेम की मैं जयगान करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।